BNC Medical Clinic Dr. Ankush, one of the top three doctors in Brampton. Mathe par, chehre par, jhuriyan, yani wrinkles, lip treatment, nose treatment, Botox and fillers ke zariye. Aur haan, agar aapke baal girte hain, to PRP ke zariye hair loss ka ilaaj bhi. Always go to expert. He will make you look much younger. BNC Clinic Dr. Ankush. 437-757-8191. Call anytime.
वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और हमारे साथ अब तक की गर्मा गर्म खबरें लेकर जाएं, क्योंकि वो मैंने जो दे दी है वो तो हो गई ना खत्म। अब जो ये देंगी कहेंगी नहीं जी ये वाली सही है, हमने जो दी है वो डिस्कार्ड हो गई। कोई बात नहीं, हमारे पास 7 मिलियन USD है। 5 मिलियन USD की तो मैं खरीदूंगा सिटीजनशिप सबसे पहले, फिर भी मेरे पास 2 मिलियन USD बचेंगे, उस पर मैं देखूंगा कि क्या करना क्या नहीं करना। प्लान बनाना पड़ेगा ना, रमजान में सिर्फ प्लान बनाऊंगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने 4 फॉलोअर्स के साथ पांचवा नहीं कर पा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, पांचवा दे दो दे दो, फिर कहते हैं मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। मैंने उनको कहा मेरे पास माँ है, उसकी दुआ है मेरे पास, जो मुझे ऊपर से जन्नत से भेज। महाराज शाजिया मलिक साहबा को खुश आमदीद कह रहे थे, और हम अगेन ये मेरे सीरियसली बात कर रहा हूं, और आप इनको 5 एटलीस्ट फॉलोअर्स करा दें, मतलब इस रमजान तक तो करा दें यार। चलें आइए उनको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और उनकी बकौल उनके गर्मा गर्म खबरें वो सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
WS नमस्ते वड़कम, कैसे हो, जिंदा हो?
मजा मचे
ठीक सही है, सब चंगा,
मजामा भी है और पजामे में भी
सब चंगा सी
अलहमदुल्ला
ठीक है। मोदी जी कहते हैं ना सब चंगा सी, सब चंगा सी,
जिंदा हूँ जो कि मुझे आप कैसे हैं,
जिंदा हूँ
अब मैं कहते नहीं मैं जिंदा हूँ।
अच्छा अच्छा ठीक है,
आपसे पूछे आप कैसे हैं, जिंदा हूँ,
जिंदा हूँ, साथ ही गाना शुरू कर दो जी, ठीक है।
नो नो मेरा कोई ताल्लुक नहीं इस गाने से, वैसे रमजान आ रहे हैं, सॉरी
नहीं रमजान आए ना आए, तुम्हारा जो है वो निकियों से क्या ताल्लुक है भाई, तुम्हारा तो इनके साथ।
हाँ, क्योंकि वो मसला है कि हमें बचपन से सिखाया गया उसको दरिया में डालते हैं, तो हम गिनते नहीं है। शी इज राइट, 100% राइट, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे, लेकिन जब भी कभी तौफीक होती है तो उसको दरिया में डाल देते
हैं। तुम्हें पहले कहा था तुम नौटंकी करो, वैसे तुम अगर आलम बन जाओ,
चलो अब आलम बना रही है, कभी नौटंकी बना देती
है, लोगों को इतना बेवकूफ बनाओ, इतना बेवकूफ बनाओ आमिर के ऑनेस्टली इसकी कोई याद, और तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे ना इस बेवकूफ बनाने।
अच्छा, पता आपको एक जमाना आ जाएगा जब आदमी सच बोलेगा सामने वाला कह रहा है झूठ है, और वो खुद झूठ बोल रहा होगा और कहेगा मैं सच बोल रहा हूँ।
तुम अपना एक चलाओ आलम ऑनलाइन,
समझ रहे हो आपको,
तुम चलाओ सर अपना
एक, जो चलाने वाले थे आज वो भी ऊपर जा चुके
हैं। नहीं नहीं
मैं ऐसा
आलम ऑनलाइन 2 चलाओ,
आलम ऑनलाइन चलाने वाले
नहीं नहीं उनको छोड़ो, तुम अपना चलाओ, तुम्हारा वो प्रोग्राम उनसे भी ऊपर चलेगा, बहुत ज्यादा चलेगा इतना। अब तुम्हारी टेंट पे 50,000 आ गए हैं, हिट्स हैं, तो अब तुम सोचो कि तुम अगर ये प्रोग्राम चलाओगे आलम ऑनलाइन 2 और उसमें तुम्हारी ये नौटंकी है, तुम देखो कितनी दुनिया पागल होगी।
पहले दौर था ना, लोग समझते थे कि यार हम खूबसूरत हैं, हम अच्छी अंग्रेजी,
वो तो तुम करके बोलते हैं, वो तो तुम कहते हो मैं खूबसूरत आदमी हूँ,
जर्नलिज्म में डिग्रियां भी ली हुई हैं और ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस भी है।
जी जी,
लेकिन अब जमाना वाइजन चेंज हो गया है लोग सच सुनना चाहते हैं, स्टोरिया नहीं।
अच्छा आप देखो, मैंने तुम्हें कहा ना तुम मुंह खोलते हो और
स्टोरी क्या है, मेरे जैसा आदमी दे हसीन तरीन खूबसूरत तरीन अल्हम्दुलिल्लाह, या कोई वो जर्नलिस्ट जिसका एक्सपीरियंस को सदियों का हो
1945 से
4 फॉलोअर्स ये साबित करते हैं
कि पॉपुलर कौन है,
पॉपुलर वोट। लेकिन लोग डोनाल्ड ट्रंप साहब पॉपुलर वोट भी मिला और उनको इलेक्ट्रोल वोट भी मिले, इस तरीके से जस्टिन ट्रूडो साहब पॉपुलर वोट हासिल करते हैं अभी, जैसे हमारे डकफोर्ड साहब कल इलेक्शन होंगे तो वो कैसे जीतेंगे? पॉपुलर वोट से जीतेंगे ना? उनकी जो नैनो या शैनो के जितने आते हैं वो किस बेस पर आते हैं? पॉपुलर
कि कौन पॉपुलर है ज्यादा?
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू
तुम आमिर यू आर इन रॉन्ग बिजनेस प्लीज तुम दो काम ही कर सकते हो जिंदगी में या तुम नौटंकी करो या तुम आलम ऑनलाइन टू चलाओ प्लीज
भाई आर पापा सुन रही हैं
हाँ हाँ
और आर पापा
प्लीज खुदा के लिए
बचाएं चलिए खबर सुनाएं
हाँ जी खबर आ जाए अच्छा जनाब आज भी हमारे साथ जो हैं वो कल असल में कुछ टेक्निकल खराबियों की वजह से
टेक्निकल ग्लिच आ गया
था तो वो हमसे जुड़ नहीं सके हमारे आज हमारे साथ कैसर सगीर साहब होंगे तो हम उनके साथ क्रिकेट के दर्द उनके साथ जरा जो है वो कर लेंगे शामिल लेकिन अभी जो है हम न्यूज की तरफ जाते हैं दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय नाजिया रहमान नाजिया रहमान होती हैं जनाब रिजवे ऑन नहीं डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे के ऊपर वहां पे जबरदस्त उन्होंने नया अपना डेंटिस्ट्री ऑफिस खोला है तो आप उस क्लिनिक पे जाओ और आपके दांतों के जितने मसाइल हैं वो हल करेंगे और दूसरा आप क्विक ट्रक ल्यूब पे जाएं वहां पे जनाब नैपनी की जो लोकेशन है एक तरफ से अंदर जाओ दूसरी तरफ से 15 मिनट में बाहर चले जाओ बिल्कुल अपने जो आपका ट्रैक्टर ट्रेलर या जो आपका ट्रक है उसको नया नवेरा बना के आप जा सकते हो क्योंकि बहुत ही जेन्युइन किस्म के ऑयल डालते हैं वो ठीक है जी आप उधर जाओ और अगर आपको न फटने वाले कपड़े चाहिए तो आप जाओ जी स्पीयर एंड मैकके पे ब्रिटानिया रोड के ऊपर आगे है और बहुत ही जबरदस्त इटालियन वूल के कपड़े दे रहे हैं आप उधर जा सकते हैं असलम भाई पायल ज्वेलर्स पे होते हैं आपकी लाइफ का कोई भी ओकेशन है आप उनके पास जाओ और ज्वेलरी ले सकते हैं और जनाब हमारे सुल्तान भाई ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे होते हैं बंडल डील्स देते हैं सस्ते में देते हैं आप उनके पास जाके वो डील्स का एंजॉय का मजा ले सकते हैं और हमारे जो फैसल चड्ढा साहब हैं दो रेस्टोरेंट्स अब चला रहे हैं विलेज टेस्ट के एक मिसिसागा में और एक ओकविल में तो आप जाएं एंजॉय का मजा लें ओके जनाब अब जो है आज नैनोस का फिर से एक रिसर्च आया है और उसमें उन्होंने कहा जी कि 10 में से जो 3 लोग हैं अब वोटर्स जो है ना वो आमिर की तरह के हो गए जलेबी की तरह के सीधे उन्होंने कहा नाउ वी विल वोट स्ट्रेटेजिकली अब स्ट्रेटेजिकली का क्या मतलब है मतलब है बड़ा सोच समझ के अब जो है हम देंगे 920 ऑन्टेरियंस का इन्होंने इंटरव्यू लिया था फरवरी 20 से 22 के बीच में 17% ने कहा जी कि हम जिस पार्टी को आमिर तो ये बात सुनो कहते हैं हम उस पार्टी के अगेंस्ट वोट देंगे जिसको हम चाहते नहीं है कि वो जीते सोचे जरा कैसी बात है 11% ने कहा कि हम उस लीडर के अगेंस्ट वोट देंगे जो हम चाहते हैं कि नहीं आए 40% ने कहा कि हम जिस पार्टी को चाहते हैं उसको देंगे 29% ने कहा कि हम जिस पार्टी के लीडर को चाहते हैं हम उसको देंगे और 4% अनश्योर थे टोरंटो के अंदर 39.8% ने कहा कि हम जिस पार्टी को पसंद करते हैं उसको देंगे यानी कि ये स्पेसिफिकली अब टोरंटो है 21.9% ने कहा जो लीडर हमें पसंद है हम उसको टोरंटो में देंगे 20.7% ने कहा कि हम उस पार्टी के अगेंस्ट देंगे जिसको हम चाहते नहीं है विन करें दिस इज स्पेसिफिक टू टोरंटो आई एम अगेन टेलिंग यू ठीक है 15.2% ने यहां पर टोरंटो में कहा कि हम उस लीडर के अगेंस्ट वोट देंगे जिसको हम पसंद नहीं करते हैं जो पार्टी है अभी भी 14 पॉइंट से आगे चल रही है ओवर लिबरल्स 1200 ऑन्टेरियंस का ये जो सर्वे किया था फरवरी 23 से 25 के बीच में इसने 45.7% ने कहा कि हम पीसी को वोट देंगे 31.9% ने कहा लिबरल्स 16.5% एनडीपी 3.8% ग्रीन और डिसाइडेड और अनडिसाइडेड जब दोनों वोटर्स को जमा किया तो 41% ने कहा पीसी को वोट देंगे 28.7% ने कहा लिबरल्स 14.8% एनडीपी 3.5% ग्रीन 1.8% अदर्स और 10.3% अभी भी अनश्योर थे डकफोर्ड साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि मैं थर्ड मेजॉरिटी गवर्नमेंट इसलिए बनाना चाहता हूं कि मैं जो है ट्रंप साहब के टैरिफ्स के अगेंस्ट खड़ा हो सकता हूं और पीसी पार्टी वाहिद पार्टी है जो ऐसे थ्रेट्स को का फेस कर सकती है टोरंटो सेंट पॉल्स के अंदर आज जो एनडीपी की लीडर थी मैरिट स्टाइल्स उन्होंने कहा कि हम वो पार्टी है जो कि रियल चेंज लेकर आएंगे क्योंकि जो पीसी पार्टी जो है वो बिल्कुल लिबरल्स के जैसी है इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम लाइफ को मोर अफोर्डेबल बनाएंगे ब्रॉनी कॉम्बी ने कहा जी कि उन्होंने आज ज्यादातर टाइम जो है मिसिसागा में किया और उन्होंने लोकल बिजनेसेस को विजिट किया फिर वो ओकविल और हैमिल्टन में भी थी उन्होंने कहा जी कि हम लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं ओंटेरियो में फोर्थ साहब जो है उन्होंने ज्यादातर आउटसाइड विंडसर टाइम गुजारा और फिर उन्होंने उनकी जो कैंपेन अभी एंड हो रही है मिसिसागा ईस्ट कुक्सविल में हो रही है जो कि ब्रॉनी कॉम्बी की राइडिंग है आपको मालूम ही है मैरिट स्टाइल्स जो थे वो उसके बाद फिर नायग्रा फॉल्स और हैमिल्टन में भी आए ग्रीन पार्टी के लीडर जो है माइक श्राइनर वो जो है किचनर के अंदर कर रहे थे कन्वेसिंग विद एसलिन क्लैंसी आपको पता ही है कि वो बड़ा उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की थी सेकंड जो सीट थी ग्रीन पार्टी के लिए वो उन्होंने जीती थी एक बाय इलेक्शन में 2023 में ये जनाब कल ट्यूजडे नाइट को इंग्लिश लैंग्वेज का डिबेट था और इसके अंदर जो फेडरल लेवल के जो लिबरल रेस के अंदर लोग हैं उनकी डिबेट थी और इसके अंदर क्रिस्टिया फ्रीलैंड, मॉर्क कार्नी, करीना गोल्ड और फ्रैंक बेलिस जो थे वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। फ्रीलैंड ने कहा कि ये बहुत खतरनाक है टैरिफ्स जो कि ट्रंप साहब अनाउंस कर रहे हैं और इसके खिलाफ हमको डिफेंसेज लाने पड़ेंगे, ये इतने खतरनाक है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने कभी देखे नहीं थे। बेलिस ने कहा कि हमको क्राइसिस मैनेजमेंट चाहिए और निगोशिएटिंग स्किल्स चाहिए इनसे बात करने के लिए। मॉर्क कार्नी ने कहा कि हमारा अगर इकोनॉमी वीक ना होता तो ये थ्रेट समय उनकी तरफ से नहीं आते। करीना गोल्ड ने कहा कि मेरा चूंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पास तो मैं इन चीजों को बहुत अच्छे से डील कर सकती हूं। वैसे भी ट्रंप का गवर्नमेंट जो है मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है, एज अ हाउस लीडर मुझे ये स्किल मिले है कि मैं लोगों के साथ कैसे डील करूं जो मेरे साथ अग्री नहीं करते हैं। और उन्होंने कहा जी कि मैं तमाम जो प्रोविंसेस और टेरिटोरीज है उनके साथ मैं खड़ी रहूंगी एज प्राइम मिनिस्टर और हम जो है एक पॉलीएफ जैसा लीडर जो है वो नहीं सह सकते हैं। फ्रीलैंड जो है उन्होंने भी कहा जी कि हमको भी कंजर्वेटिव्स का टो जो है वो नहीं करना चाहिए जो टोन है, क्योंकि कार्नी साहब ने उससे पहले कहा था कि अगर हमारी इकोनॉमी वीक ना होती, वो कहते हैं ये जो जबान है ये पॉलीएफ साहब बोलते हैं, हम जो है इंक्रीज करेंगे सोशल सर्विसेज एंड ऑल दैट, और पॉलीएफ साहब जो है वो अगर आगे तो ये क्लाइमेट चेंज का जो हमने किया हुआ है एक्शन ये उसको खत्म कर देंगे। और वो हर वक्त कहते हैं कैनेडा इज ब्रोकन विच इज नॉट ट्रू। बेलिस ने कहा कि हमको ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है उनको उसके लिए इंसेंटिव देने पड़ेंगे। कार्नी साहब ने भी ऐसा ही कुछ कहा और इसके अलावा उन्होंने कहा जी के हमको जो है ये इनको कंज्यूमर्स को टैक्स नहीं करना चाहिए। फ्रीलैंड जो है उन्होंने कहा कि जी मैं जब बातचीत कर रही थी इनके साथ मैनिटोबा के प्रीमियर वैब किनो के साथ तो तब हमें पता चला कि हमको कार्बन टैक्सिंग नहीं करनी चाहिए थी, तो हम उसके ऊपर अब देखेंगे। कार्नी साहब ने और बेलिस ने भी ऐसा ही कुछ कहा कि हम उसके ऊपर देखेंगे कि उसको कैसे चेंज किया जा सकता है। करीना गोल्ड जो थी वाहिद कैंडिडेट थी जिसने कहा कि नहीं हमको ये लेवीज जो है कीप करनी चाहिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज फॉर रियल। तकरीबन 280,000 क्रेडियंस जो है उन्होंने जी एक पिटीशन साइन किया है और उन्होंने ट्रूडो साहब को बोला है कि एलॉन मस्क का जो क्रेडियन सिटीजनशिप है वो आप खत्म करो क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है। ये अमेरिका जो कि दूसरी एक फॉरेन कंट्री है उसके अंदर डॉज का हेड है और कनाडा की सॉवरेनिटी को इरेज करने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जो कि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, ये अपना पावर और वेल्थ यूज कर रहा है हमारे मुल्क में भी जो इलेक्शंस हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करता है। मस्क साहब जो कि दुनिया के रिचेस्ट बंदे हैं उनके पास साउथ अफ्रीका, यूएस और कनेडियन पासपोर्ट्स है और कनेडियन इसलिए है क्योंकि उनकी जो मदर थी वो कनेडियन बाय बर्थ थी। तो ऐसे ब्रैम्पटन के अंदर जो है अब एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो कि अगर 4 मार्च को ट्रंप साहब के 25% टैरिफ्स आए तो उसको कैसे डील किया जाएगा, इसकी आज जो सारी डिटेल्स थी मीडिया के साथ बात करते हुए ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन और उनकी काउंसिल ने कहा, उन्होंने कहा जी कि हम मेयर टैरिफ टास्क फोर्स बना रहे हैं, हम कुछ चीजों की आदी हो जाते हैं लेकिन उन चीजों को जब चेंज करते हैं तो उसका हाई कॉस्ट होता है लेकिन उसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी होती है कि हम इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें और हम इतना भी वल्नरेबल ना हो जाए कि जैसे अभी है। इसके अलावा काउंसलर रोवेना सैंटोस जो है उन्होंने भी बोला कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम कट करें अपना डिपेंडेंस यूएस मार्केट के ऊपर और जनवरी में हमने काउंसिल ने एक मोशन पास किया था जिसमें कि हमने कहा था कि नॉट मेड इन यूएस जो है उसको प्रायोरिटाइज करने का जरूरत है और कैनेडा और ब्रैम्पटन की चीजें आप ज्यादा खरीदो। यूएन एक्सपर्ट्स और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उन्होंने आज बहुत ज्यादा कंडेम किया है जो एक एआई जनरेटेड वीडियो जो है वो बनाया गया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि गाजा को पूरे का पूरा रीबिल्ड किया गया है और बीच के पास बड़ी ही ग्लिटरी किस्म की जो है वो इमारतें हैं और एक लंबा सा और ऊंचा सा बड़ा सारा स्टैचू जो है ट्रंप साहब का खड़ा हुआ है। ये ट्रंप साहब का जो सोशल मीडिया पोर्टल था ये ट्रूथ सोशल उसके ऊपर बहुत देर रहा, इस वीडियो को 10.5 मिलियन लोगों ने जो है इंस्टा के ऊपर शेयर किया और 2400 टाइम्स जो है इसको वहां पे भी देखा इनके सोशल मीडिया के ऊपर। 33 सेकेंड का ये जो क्लिप है ये काफी देर तक ट्रंप साहब के अकाउंट के ऊपर रहा, सोशल मीडिया यूजर्स ने इसको काफी कंडेम किया। यूनाइटेड नेशन स्पेशल रिपोर्टर ऑन पैलेस्टीनियंस ह्यूमन राइट्स जो है फ्रांसिका एल्बनीज उन्होंने कहा कि ये अब्सर्ड किस्म का है और इस तरह के जो इरेटिक पॉलिसीज होते हैं ये सर्व करते हैं इस तरह का स्क्रिप्ट को कंट्रोल करना, डिस्ट्रैक्ट करते हैं और ये बिल्कुल अब्सर्ड है और ग्लोबल स्टेबिलिटी को डिसरप्ट करेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल एग्नेस कैलामर्ड ने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि ये बियॉन्ड डिसेंसी है और ये कहना कि गाजा 2025 व्हाट्स नेक्स्ट, ये शो करता है कि कितनी इसके अंदर जो है इनडिसेंट चीजें चीज को हाईलाइट करने का कोशिश किया गया है, क्योंकि ये तस्वीर शो करती है और ये वीडियो शो करता है बड़े, जैसे मैंने आपको कहा, ग्लिट्सी बिल्डिंग्स और पाम ट्रीज एंड यॉट्स और बहुत हाई लाइफस्टाइल, जैसे कि वो बोलते हैं कि हम रिवीरिया बनाएंगे इसको मिडल ईस्ट का, वैसा ही कुछ। एप्पल के शेयर होल्डर्स जो हैं आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा जोर आया था और एप्पल कंपनी के ऊपर के जो ट्रंप साहब का पुश है कि ये कॉर्पोरेट जो प्रोग्राम्स हैं डायवर्सिटी के ऊपर इसको खत्म किए जाए। नेशनल सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च जो एक थिंक टैंक है उसने एक ड्राफ्ट बना के भेजा है, एप्पल को भेजा था, और उसमें उन्होंने कहा था कि आप भी जो ये बात कर रहे हैं ट्रंप साहब के डीईआई डाइवर्सिटी इक्विटी और इंक्लूजन के जो इनिशिएटिव्स हैं वो आप खत्म करो अपनी कंपनी में से, तो एप्पल ने उसको आज पुश बैक किया। उन्होंने कहा हमने अपने शेयर होल्डर्स के साथ ये बात की थी और वो चाहते हैं कि ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन एप्पल ने अपना इसका वोट टैली किया रहा वो बताया नहीं है। जेलेंस्की साहब ने कहा जी कि हमारा कोई भी सिक्योरिटी गारंटी जो है वो अग्री नहीं किया है यूएस के साथ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि अभी तो ट्रंप साहब ने जो है बोल दिया है सबको कि आप आ रहे हैं यूएस में तो एक क्रिटिकल मिनरल्स का डील बनाओगे ट्रंप साहब के साथ। उन्होंने कहा जी ऐसा कोई डील जो है वो हमने अभी तक नहीं बनाया है और वो कितना सक्सेसफुल रहेगा वो ट्रंप साहब के ऊपर डिपेंड करेगा अगर वो हमको सिक्योरिटी का कोई गारंटी देंगे। आपको पता ही है कि ये अमरीका कहता है कि हमको यूक्रेन से क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए है, तो ये मिनरल जो क्रिटिकल मिनरल्स होता है ये जितनी भी हाई टेक इंडस्ट्री है उसके अंदर यूज होता है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर वेपन्स इलेक्ट्रॉनिक्स सबके अंदर। तो ट्रंप साहब ने जो कहा था ये कि जी हम इनके साथ एक रेयर अर्थ मिनरल्स का डील जो है वो करने वाले हैं, तो उसके लिए इन्होंने कुछ आज बताया नहीं है कि वो करेंगे। इसके साथ साथ यूएस और रशिया का एक मीटिंग हुआ इस्तांबुल में जो है वो कल होएगा, सॉरी सितंबर फरवरी 27 को होएगा, और उसके अंदर वो कहते हैं जी हम बहुत सारी डिप्लोमेटिक बातें करेंगे लेकिन इसके अंदर यूक्रेन जो है उसको शामिल नहीं किया गया। तो वही यूक्रेन ने आज फिर कहा कि यूएस रशिया का जो मीट हो रहा है ये वॉर को रोकने के लिए यूक्रेन में, तो यूक्रेन नहीं बैठा तो ये डील कैसे होगा। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि हम रशिया के साथ डील करेंगे। आपको मैंने कल खबर भी सुनाई थी कि कल जो वोटिंग भी हुई है यूनाइटेड नेशंस में उसने अमरीका ने जो है रशिया का साथ दिया है, यूक्रेन का तो साथ भी नहीं दिया। चिली के अंदर हालात काफी खराब हैं, स्टेट ऑफ इमरजेंसी वहां पे अनाउंस की गई है क्योंकि कंप्लीट पावर शटडाउन हो गया है और मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हैं। हालांकि उनका जो कैपिटल है सेंट डिएगो उसके अंदर काफी सिस्टम्स जो हैं वो होते हैं अप एंड रनिंग, वो तक भी अंधेरे के अंदर है। इसकी वजह यह है कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन जो है वो चिली के नॉर्थ में बिल्कुल जो है वो खराब हो गई थी पूरी तरह से, इंटीरियर मिनिस्टर कैरोलिन तोहा ने यह बताया। लेकिन प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिक जो है बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं, वो कहते हैं जी ये कैसे हो सकता है कि इतना खराबी आ गया कि 8 मिलियन होम्स जो हैं वो अफेक्टेड है। उन्होंने गवर्नमेंट के जो फर्म्स है उसको ब्लेम किया, उन्होंने कहा कि ये जो तुम लोगों ने सारी ये जो इलेक्ट्रिसिटी की कंपनीज लगाए हुए हैं इनको कोई जो है लायबिलिटी तुम लोग नहीं देते और ये एवरीडे लाइफ जो है लोगों के ये इसको इम्पैक्ट करता है, तो ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि वो फाइंड आउट करें कि किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इनके 16 रीजन्स हैं और 16 में से 14 रीजन पूरी तरह से डार्कनेस में हैं, तो अब ये चीजें कब अप एंड रनिंग होंगी इनके बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं है। ईरान ने आज कहा है जी कि हम बिल्कुल यूएस के साथ न्यूक्लियर टॉक्स में एंगेज नहीं करेंगे जब तक कि ये जो ट्रंप साहब ने ये जो पॉलिसी लास्ट वीक अनाउंस की थी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर और बहुत ज्यादा जो सैंक्शंस डाले थे ईरान के ऊपर उसको जिस वक्त तक खत्म नहीं किया जाएगा। ये बातें आज जो है फॉरेन मिनिस्टर जो है ईरान के अब्बास अराकची उन्होंने बोला एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में विद रशियन काउंटर पार्ट सर्जे लावरोव इन तेहरान। उन्होंने कहा जी कि ये जो फ्रेश राउंड ऑफ सैंक्शंस हमारे ऑयल इंडस्ट्री पे लेकर आया है क्योंकि ऑयल इंडस्ट्री इनकी लाइफलाइन है, क्योंकि आपको पता है कि ईरान जो एक ऑयल जो है वो इकोनॉमी है, तो उन्होंने कहा जी कि हम इसके जब सैंक्शन हमारे पे रहेंगे तो फिर तो हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे ट्रंप साहब के साथ। और जो इनका पहला टर्म था ट्रंप साहब का उसमें भी ये बहुत सारे सैंक्शन लाए थे। अर्लियर दिस मंथ ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामनाए उन्होंने भी बोला था कि यूएस के साथ इन कंडीशन में बात करना ना तो स्मार्ट है ना वाइज है ना तो हमारी ऑनर के जो है वो मुताबिक है, तो हमारे ऑनर के खिलाफ है। बहुत सारे जो दुनिया में एक्सपर्ट्स हैं जी अब वो कह रहे हैं कि गल्फ मोनार्कीज जो हैं उनका रोल دنیا میں جو وارز ختم کرنے میں بہت زیادہ پازیٹو ہوتا جا رہا ہے اور بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، چاہے غزہ کا وار ہوئے، چاہے یوکرین کا ہوئے، چاہے کہ دوسری انٹرنیشنل کمیونٹی کے مسئلے ہوئے، سعودی، قطر اور یو اے ای جو ہیں وہ بہت زیادہ آگے آگے رہتے ہیں، اپنا لیوریج بھی یوز کرتے ہیں، پاور بھی یوز کرتے ہیں ان کانفلکٹس کو ختم کرنے کے لیے. انہوں نے کہا جی ان لائک گریٹ پاورز جو جی سی سی کے جو کنٹریز ہیں وہ ہمیشہ ولنگ رہتے ہیں بات کرنے کے لیے بوتھ سائڈز پہ، اور ان ڈائریکٹ جو چینلز آف جو ڈائیلاگ ہوتا ہے اس کو بالکل کھلا رکھتے ہیں، ڈائریکٹلی ایڈورسریز کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں جو ویسٹ کے ہیں اور ویسٹ کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو جو ہے اسی سلسلے میں ان کی ملاقاتیں سعودی ڈیفنس منسٹر پرنس خالد بن سلمان ال سعود جو ہے ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے بہت سارا سیکیورٹی ٹائز کے بارے میں بات کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ سیریا، لیبنان، غزہ اور ان دا وائڈر ریجن ہم کو پیس لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ہم کو ہوتیز کے خلاف بھی لڑنا پڑے گا. پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں جو اس وقت باکو میں ہیں، انہوں نے آج آسان خدمت ایک سینٹر جو ہے اس کے اندر وہ رکے تھے، جہاں پہ کہ 400 سروسز انڈر ون آپریشن جو ہے وہ آفر کیے جاتے ہیں، جس میں کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم بھی اس ماڈل کو اسلام آباد میں فالو کریں گے، یعنی کہ ون ونڈو آپریشن جو ہوتا ہے اس میں وہ کریں گے. انہوں نے دیکھا کہ کیسے ماڈرن ٹیکنالوجی اور ایکسلنٹ ہیومن ریسورسز کو یہاں پہ یوز کیا گیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ سب جو ہے اتنی ترقی جو ہے ادھر آذربائیجان میں اس کی وجہ ڈائنمزم آف پریزیڈنٹ الہام علیف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک جو اسٹارٹ اپ سینٹر تھا انو لینڈ اس کو بھی وزٹ کیا، جہاں پہ کہ سینکڑوں ہی یگسٹرز کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ نے کہا جی کہ ہمارا ٹریڈ جو ہے 400 ملین سے بڑھا کے 2 بلین تک ٹچ کرنا چاہیے. فارن آفس نے آج کہا ہے جی کہ پاکستان میں ابو دھابی کے جو کراؤن پرنس ہے شیخ خالد بن محمد الزائد الناہیان وہ اپنے فرسٹ آفیشل وزٹ پہ کل پاکستان آئے گے، اور ان کے ساتھ بہت سارے یو اے ای کے منسٹر، سینئر آفیشلز، پرومیننٹ ممبرز آف بزنس کمیونٹی بھی رہیں گے. پاکستان ان کے ساتھ جو ہے ڈپلومیٹک ٹائز، اکنامک اور کلچرل ٹائز کے بارے میں بات کرے گا. یو اے ای جو ہے پاکستان کا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اس کے علاوہ جو میجر سورس آف ریمیٹنسز ہے وہ بھی پاکستانی جو ہے یہاں یو اے ای سے زیادہ بھیجتے ہیں اور بہت بڑے تعداد میں یہاں پہ رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ دونوں جو ہے ٹریڈ، انرجی، ڈیفنس اور انویسٹمنٹ میں بھی کولیبوریٹ کرتے ہیں. پاکستان کے فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب نے بولا کہ جی ہم گورنمنٹ جو ہے وہ یہ بہت سارا سٹیپس لے رہے ہیں کہ یہ ریڈیوس کرے انٹروینشن آف ہیومنز ان ٹیکس کلیکشن. وہ کہتے ہیں جیسے جیسے ہیومنز کو کم ہم کرتے جائیں گے ویسے ویسے جو لیکیج ہے وہ بھی گھٹتا چلا جائے گا. اور انہوں نے کہا جی یہ بہت ہی میں مائلڈ ورڈ یوز کر رہا ہوں فار کرپشن، یعنی کہ جیسے جیسے ہم مشین اور آپریٹڈ کرتے جائیں گے چیزوں کو اور اس کے اندر لوگ انوالو نہیں رہے گے تو اس کے اندر کرپشن بھی کٹ ہوئے گا. آج یہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ بات کر رہے تھے پشاور کے اندر، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ سارے کا سارا جو فرسٹ اسٹیپ ہے اس میں یہ ہے کہ ایف بی آر جو فیڈرل بیورو آف ریونیو ہے اس سے ہم یہ سارا سسٹم نکال کے منسٹری آف فائنینس کے اندر یہ سب کچھ لے کے جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر اپوزیشن جو ہے وہ بہت ہی گرینڈ الائنس کانفرنس اسلام آباد میں آرگنائز اس نے کیا ہوا ہے اگینسٹ دا رولنگ کوئلیشن ٹو ایڈریس دا پریویلنگ چیلنجز. انہوں نے جو یہ ہڈل کیا اس کو تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچک زئی جو ہے اس کے ریزیڈنس کے اوپر پہلے تو انہوں نے ہڈل کیا تھا، اور پھر یہ میٹنگ ٹو ڈے کا جو ہے یہاں پہ ایک لوکل ہوٹل میں کر رہے ہیں. اس کو اٹینڈ کیا پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، ایس آئی سی کے چیف صاحب زادہ حامد رضا، عوامی پاکستان پارٹی کے شاہد خاقان عباسی، مجلس وحدت مسلمین کے نذیر شیرازی اور دوسرے لوگ. اچک زئی نے کہا کہ یہ جو ان لیگل رولرز ہیں ان کو ہم اکاؤنٹیبل کرنا چاہتے ہیں اور اس ان لیجیٹیمیٹ اسمبلی کو ہم نہیں مانتے ہیں. پی ٹی آئی کے اور گورنمنٹ کے جو ٹاکس چل رہے تھے آپ کو پتا ہی ہے کہ وہ فیل ہو گئے تھے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہم ایک گرینڈ الائنس بنائیں گے دوسرے پارٹیز کے ساتھ. یہ جو سارا ایونٹ ہو رہا تھا ٹو ڈے یہ لیجنڈ ہوٹل کے اندر ہو رہا تھا، لیکن اس میں پھر ایسا بہت سارا پریشر آیا ہوٹل پہ کہ تم یہ نہیں کرو یہ ایونٹ. شاید خاقان عباسی نے کہا کہ جی ہم یہ جو بٹھائے ہوئے ہیں موٹ یہ کنٹری کے ایشوز پہ رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کے پاس ہے کے لیے ہے، اور یہ بلا وجہ ہوٹل کے ایڈمنسٹریشن کو جو ہے وہ دھمکا رہے ہیں کہ وہ یہ نہ کریں. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ جتنا مرضی ہوٹل کے امپلائیز کو دوسروں کو دھمکاؤ، ہم یہ اپنا ٹو ڈے موٹ جو ہے یہ تو کمپلیٹ کریں گے ہی. इंडिया में जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं जी योगी आदित्यनाथ, उनके खिलाफ अब बहुत ज्यादा मोर्चे निकलने लगे हैं और उनके अपने खुद के पार्टी के लोग जो हैं, यानी कि बीजेपी के जो लोग हैं वो वहां पे यूपी में, वो भी इनके अगेंस्ट होने लगे हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि बे इंतहा करप्शन है, मारामारी है और बहुत जुल्म जो है यहां पे चल रहा है। इसलिए कोई तकरीबन 6 के करीब जो इनके अपने खुद के बीजेपी के मिनिस्टर जो के यहां पे यूपी के अंदर है, वो अब चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर एतराज कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ये आप काम बिल्कुल ठीक से नहीं कर रहे। इसके अंदर अब एक 7वीं मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रतिभा शुक्ला, वो भी शामिल हो गई है और वो कह रहे हैं कि जी हर डिपार्टमेंट में बहुत सारे इररेगुलरिटीज आते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मैं एक एक यूपी की डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां जाती हूं मुझे पता चलता है कि रिक्रूटमेंट में, दूसरी चीजों में गवर्नमेंट बे इंतहा घपले कर रही है, तो इसको हमको रोकने का जरूरत है। ईयू की जो टॉप लीडरशिप है, यानी कि ईयू की प्रेसिडेंट जो हैं उर्सुला वॉन लेन डेयर और उनके साथ जो उनके 26 कमिश्नर्स हैं, ईयू की कमिश्नर हैं, यूरोपियन कमिश्नर जो हैं उनके साथ और भी 26 कमिश्नर हैं, ये सब आज इंडिया में पहुंचे हुए हैं मोदी जी के साथ बात करने के लिए। उसकी वजह यह है कि यूएस जो है कॉन्स्टेंटली अपने ये जो ईयू के एलाइज हैं इनको साइड लाइन पे कर रहे हैं, जैसे कि रशिया के साथ टॉक कर रहे हैं बगैर उनको बताए हुए और बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, कह रहे हैं नेटो में अब मैं पैसे नहीं डालूंगा और चीजें, तो वो कह रहे हैं हमारे जो सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा उन्होंने ईयू को कहा है कि उनके प्रोडक्ट्स पे अब वो टैरिफ्स भी लगाएंगे। तो अभी इनके पास और जो है फिर अल्टरनेटिव क्या है? अकॉर्डिंग टू ईयू उनके पास अल्टरनेटिव अब सिर्फ जो है इंडिया ही रह गया है। इसीलिए आज ये सिलसिले में मोदी जी के साथ मुलाकात कर रहे थे, उन्होंने कहा वी आर लुकिंग टूवर्ड्स फ्रेंड्स एंड इंडिया नेचुरली इज द कैंडिडेट। तो जनाब ऐसे पाकिस्तान के जो बड़े मशहूर स्टार हैं साजिद हसन साहब, आज उनके ऊपर सोशल मीडिया पे बेतहाशा क्रिटिसिज्म आया, या क्योंकि वो अपने बेटे साहिर हसन को जिसको के अलेजली अरेस्ट किया गया है फॉर सप्लाइंग ड्रग्स ड्यूरिंग मुस्तफा आमिर मर्डर केस, उसको ये बचाने के लिए आए हुए थे। इसमें पुलिस ने तो कहा कि प्राइम सस्पेक्ट तो अरमगान कुरैशी ही है, लेकिन अलेजली उसने ड्रग्स जो था वो साहिर से लिया था और ये सारे का सारा जो मर्डर है ये लिंक्ड है ये इससे, ड्रग सप्लाई से। डीएनए का जो अभी एक एनालिसिस भी आया था उसमें भी पता चला था कि वो जो लड़की है इनके घर पे जो पाई गई थी वो भी इनकी मेड थी। तो अब सोशल मीडिया के ऊपर जो तस्वीरें आए हैं साजिद हसन साहब के अपने बेटे से कि दोनों हंस रहे हैं बड़े खुशी उधर पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं, तो सोशल मीडिया ने कहा कि ये तो प्राउड फादर होने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको अपने बच्चे को जरा समझाना चाहिए था और आपने क्या ट्रेनिंग किया है अपने बच्चे को वो ऐसे गलत कामों के अंदर है, अभी तो यू आर इन द मिडल ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और आप जो है इसके साथ हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं और यहां पे उसको बचाने आ गए हैं, तो थोड़ा सा आप थोड़ा धीरज रखो। अभी बहुत दिनों से आपको पता ही है कि ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी कि राखी सावंत जो कि इंडियन एक्ट्रेस है वो पाकिस्तानी एक्टर डोडी खान के साथ जो है वो शायद शादी करेगी और हेडलाइंस में ये थी और कह रही थी कि मैं अब पाकिस्तान की बहू बनूंगी और बहुत सारा उनका वायरल वीडियो भी आया था, डोडी ने भी कहा था मैं आपकी बारात लेके किधर आऊं। अभी ये सारे र्यूमर्स जो हैं ये खत्म हो गए हैं, इसकी वजह यह है कि डोडी खान ने सामने आके अब बोल दिया है कि मैंने एक फ्रेंडशिप में एक रिंग जो था राखी को दिया था बट वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हमारा कुछ शादी वादी करने का इरादा नहीं है, बल्कि मैंने तो राखी को बोला है कि आपके लिए मैं एक सूटेबल मैच ढूंढूंगा। संजय दत्त और मुनी रॉय का एक हॉरर कॉमेडी आने वाला है द भूतनी, और इसका आज एक ट्रेलर सामने आया है जो कि सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट ने इंस्टा के ऊपर डाला है, जिसमें कि संजय दत्त का आवाज सुना जा रहा है कि वो और उसके आसपास स्पिरिट्स है और हॉन्टेड ट्री है। इसमें सनी सिंह जो है वो भी चिल्ला रहा है अपने बिलवड के लिए पलक तिवारी के लिए फ्रॉम सुपर नेचुरल, ये जो बीइंग है मुनी रॉय जो उसके कब्जे में है, संजय जो है उसके हाथ में दो सोर्ड्स देखे जा रहे हैं और वो इनके साथ फाइट कर रहा है। इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर जी जो हमारे क्रिकेटर हैं फखर जमान, उनके बारे में बहुत सारा ये बात आ रहा था कि जी ये अब चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं अच्छे से खेल सके हैं तो शायद रिटायर हो रहे हैं, और उन्होंने एक पॉडकास्ट जो पीसीबी के सोशल मीडिया पे कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मेरे पास जो है 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के बहुत अच्छे मेमोरीज हैं और मैं हर फॉर्मेट में खेलना चाहता हूं, T20 ODI और टेस्ट में भी, लेकिन ODI तो मेरा फेवरेट जो है वो प्लेटफॉर्म है और मैं जो था इंजर हो गया था और मैं रिकवर कर रहा था, लेकिन फिर भी जब पहले भी बीमार हुआ था तो चैंपियंस ट्रॉफी मेरे दिमाग पे थी, लेकिन अब मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, दोस्त भी बता रहे हैं कि मैं शायद रिटायर हो रहा हूं, इसके अंदर कुछ भी ट्रूथ नहीं है। हाँ मेरा थायराइड का प्रॉब्लम है, कुछ दिन मैं ऑफ ले रहा हूं, लेकिन रिटायरमेंट जो है कभी भी मेरे माइंड पे नहीं था। और जनाब आज हुआ धुआंधार किस्म का मैच अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच में, एंड वाओ व्हाट अ मैच इट वाज। अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान ने ना सिर्फ हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाया चैंपियंस ट्रॉफी के हिस्ट्री में, बल्कि अपना भी करियर बेस्ट 146 बॉल 177 बनाया अगेंस्ट इंग्लैंड इन एट्थ मैच एट कद्दाफी स्टेडियम लाहौर, एंड एज अ रिजल्ट इंग्लैंड को इन्होंने हराया। ये जो थे पहले तीन विकेट्स जो थे सिर्फ 37 के ऊपर लूज कर दिए थे, लेकिन फिर अफगानिस्तान ने रीबाउंड किया। अजमतुल्लाह औरकज़ई ने 31 बॉल पे 41 बनाया, और स्किपर जो थे हशमतुल्लाह जाहिदी और नबी ने 40-40 बनाए। इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर जो है उसने 3 for 64, यानी 3 विकेट्स 3 for 64 इन 10 ओवर्स। इंग्लैंड जो थी उसने पहली दो विकेट्स जो थी वो विकेट जो थी वो 30 के ऊपर लूज कर दी थी इन 6.1 ओवर्स। फिल सॉल्ट 12, जेमी स्मिथ 9, नंबर 4 पे फिर जो रूट आए और उन्होंने डकट के साथ अपना पार्टनरशिप बनाया और 68 रन्स बनाए। फिर उसके बाद जो रूट और बटलर जो है उन्होंने 83 रन्स बनाए फिफ्थ विकेट के पार्टनरशिप ने। रूट ने बनाए 120 for 111 इंग्लैंड के जो है, लेकिन फिर भी अब उसको हरा दिया चूंकि, तो इट्स बीन नॉक्ड आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब सेमीज में जाएंगे ग्रुप बी में। रूट जो है उसने स्कोर किया है पहला ओडीआई टन आफ्टर 2019, वही बात है जब जरूरत पड़ती है तो फिर ये हिट करते हैं। अफगानिस्तान ने इससे पहले टॉस जीता था एंड दे ऑप्टेड टू बैट, और जो अफगानिस्तान के उमरज़ई हैं उन्होंने आज 5 विकेट लिए थे। पाकिस्तान के आकिब जावेद जो कि क्रिकेट टीम के हेड कोच थे वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि सिलेक्टर्स जब प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं तो उनके बेस्ट परफॉर्मेंस पे करते हैं, बैड परफॉर्मेंस पे नहीं करते हैं। हमने इसलिए लूज किया इंडिया के अगेंस्ट मैच क्योंकि हम सोच रहे थे कि जो हमारे ओल्ड प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं उतरे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम उनको स्क्वाड में नहीं रखेंगे, हमारा जो उनको अपना एबिलिटी थोड़ा शार्प करना पड़ेगा। हमारा काम सिलेक्शन था, उनका काम परफॉर्म करना था, तो उनको एडजस्ट करना पड़ेगा अभी चेंजिंग एटमॉस्फेयर के साथ। और वही क्रिकेटर सबसे अच्छा होता है जो अंडर प्रेशर खेल सकता है, और मैं जो है कोई जॉब्स नहीं ढूंढ रहा हूं और मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप लेता हूं। ये जो लॉस है पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ, और जब भी मुझे कहेंगे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। सुनील गावस्कर ने भी आज पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा एतराज किए हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जो इनका प्री मेच्योर एग्जिट हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी से, हमारा तो कोई इंडिया का बी टीम भी अब आ जाएगा तो वो भी पाकिस्तान को हराएगा, इतना खराब हालत हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट का। और उन्होंने कहा जी कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट गैप्स है अभी टैलेंट में बिटवीन द टू कंट्रीज। रिजवान जो है उसने जब पहले बॉल के ऊपर 4 हिट किया था तो हमको लग रहा था कि बहुत डिफरेंट गेम देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद ही इन्होंने जो है वो ब्लॉक करने शुरू कर दिए डिलीवरीज और रोटेटिंग स्ट्राइक नहीं रखा। पाकिस्तान के पास टैलेंटेड प्लेयर्स तो है लेकिन वो स्ट्रांग पार्टनरशिप्स नहीं बना सकते हैं और स्ट्रगल करते हैं जब उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। और हमें, मुझे तो हैरत है, इट इज सो सरप्राइजिंग फॉर मी कि अब ये लोग इंजमामुल हक जैसे बैटर्स क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। पीएसएल जो है उसमें तो ये लोग डोमेस्टिकली खेलते हैं, उसमें भी टॉप क्वालिटी बैटर इनके पास नहीं आ रहा है। सही कह रहे हो आप गावस्कर साहब, सही कह रहे हो। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज, आज रिकी पॉन्टिंग ने भी बहुत बैश किया और उन्होंने भी कहा जी कि टैक्टिकल मिसस्टेप्स जो पाकिस्तान ने लिया था उसकी वजह से इनका अर्ली एग्जिट हुआ है। उन्होंने कहा जी कि इनके जो टॉप प्लेयर्स हैं बाबर और मोहम्मद रिजवान, उनको अपना बेस्ट देना चाहिए था इंडिया के खिलाफ मैच में जो उन्होंने नहीं दिया। दे हैड टू स्टेप अप और उनको बिग रन्स बनाने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं किए। जब इस तरह के हाई प्रेशर बड़े गेम्स होते हैं तो बड़ा जो प्लेयर होता है वो उसका प्रेशर ले लेता है, जैसे कि कोहली ने लिया, ही रोज टू द ओकेजन। तो ये जो इंडिया है उसके लिए जो सबसे बड़ा मैच होता है वो पाकिस्तान के खिलाफ ही होता है, और इसीलिए उनका बड़ा प्लेयर स्टेप अप करता है क्योंकि आपका रेप्यूटेशन उसी वक्त बिल्ट होता है जब इस तरह के बड़े कंटेस्ट होते हैं इंटरनेशनल स्टेज पे और आप अपना वर्थ शो करते हैं। और मुझे कोई सरप्राइज नहीं है कि इस क्रूशल मैच में कोहली ने स्टेप अप किया और अपने टीम को जिताया। ठीक है जी, खुश है
आप? जिता दिया जी, अब आप कह रही हैं तो
अच्छा मतलब है जी झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, क्या मतलब क्या है तुम्हारा? आप कह रहे हैं मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ?
नहीं, जिता दिया मैं। हाँ। आप सही कह रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रही हैं।
हाँ, तो कौन गलत कह रहा है? गावस्कर गलत कह रहा है, रिकी पॉन्टिंग करनी है, तुम्हारे इस सवाल का क्या मतलब है?
गावस्कर साहब भी गलत कह रहे हैं।
अच्छा जी,
और रिकी पॉन्टिंग साहब भी गलत कह रहे हैं।
अच्छा, तू सही कह रहा है खाली,
जो आपके जावेद साहब ने कहा है वो सही है।
अच्छा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उसने।
अब एक बात कर, एग्जाम्पल देता हूँ भाई, आप खबरें पढ़ती है ना, ठीक है ना, अब हम आप पर एक मतलब हमें पता है कि खबरें आपने पढ़नी है, यू आर चैंपियन खबरें जैसे भी पढ़ रही हैं आगे पीछे पुरानी नई जितनी भी, अब आपके ऊपर ट्रस्ट करते हुए आपको जिम्मेदारी दे दी कि भाई आप तो पढ़ेंगी
हाँ।
और आप आके यहाँ बैठे हैं 5 बजे और खबरें ना पढ़ें
या 10 दिन पुरानी खबरें
नहीं नहीं पुरानी पुरानी की तो बात ही खत्म हो गई
हाँ।
आपने खबरें नहीं पढ़नी, आप यहाँ आने के बाद बैठने के बाद जब 5 बजे टाइम शुरू होता है और आप मुझे कहें कि आमिर मैं जो हूँ वो आज खबरें नहीं पढ़ रही या आपने खबरें नहीं पढ़ी तो मैं या जो भी होस्ट बैठा होगा फिर वो जैसा होगा फिर वैसी वो खबरें पढ़ देगा। तो जितने सीनियर प्लेयर्स जिनकी जिम्मेदारी है खेलना
उनको खेलना नहीं खेला ना, उन्होंने नहीं खेला
तो बेचारे नीचे जो
बिल्कुल वही
बार जिनके ऊपर गिरा वो पिस गए
बिल्कुल
सेम एग्जाम्पल। तो मैं आकिब जावेद की बात पे सही है, इतने नाम जब आपके बड़े नाम है आपको खेलना चाहिए
ना। तो वही तो रिकी पॉन्टिंग ने भी कहा कि बड़े प्लेयर को बड़े तरीके से बड़े टूर्नामेंट में खेलना चाहिए, वही मासूम भी तो
रिकी पॉन्टिंग को मैं जानता नहीं ना।
अच्छा जी
मतलब आई सपोर्ट माय प्लेयर्स ना, मतलब माय टीम माय कोच।
अच्छा ठीक है,
व्हाई शुड आई लिसन रिकी पॉन्टिंग और गवास्कर साहब। आकिब जावेद साहब ये बात कर रहे हैं तो हम उसको लेटर नहीं कराते?
नहीं हम क्यों नहीं करा रहे, हम करा रहे हैं। हमने तो पहले खबर पहले तो हमने आकिब की सुनाई है,
बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन नहीं किया ना उस पर।
ये तो स्टूड पे अंडरस्टूड है ना।
नहीं
ये तो अंडरस्टूड पे स्टूड है क्योंकि पहले तो हमने आकिब का सुनाया है, फिर हमने गवास्कर साहब का, फिर हमने रिकी पॉन्टिंग का।
नीचे आखिरी कौन सी ऊपर रह गई? रिकी पॉन्टिंग, गवास्कर, वो दब गई नीचे।
यानी कि फिर जो आकिब की सबसे आखिर में सुनानी चाहिए थी,
आखिर में ताकि लोगों के जहन में रहती है।
आकिब को हमने प्रेफरेंस दिया, उसका पहले सुनाया खबर, ये बाकियों के हमने बाद में सुनाए।
देखिए फर्स्ट इन लास्ट आउट,
तो फर्स्ट होता ना,
आपने फर्स्ट इन किया अब वो लास्ट आउट पीछे रह गया।
बटी
ये थोड़ा सा हमारे प्लेयर्स को इतना तो मार्जिन देते हैं ना।
अरे मुझे लग रहा है इस गेम ने काफी लोगों का संतुलन खराब किया है, उसमें से एक आमिर भी है।
देखिए मैं तो हमारे बहुत हरदिल अजीज इस वक्त हमारे साथ स्काइप पर जुड़ गए और उन्होंने मुझे मैसेज किया
हाँ।
और वो मैसेज मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप चोट लग जाए आपके ऊपर
हाँ।
और वो एक टिंचर आता था
हाँ।
वो लगता था तो कैसी एकदम
तो अभी चीख निकलेगी कैसर सगीर की। चलो जी हम जुड़ते हैं,
कैसर सगीर हमारे साथ जुड़ गए, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं हमारे, तो आइए प्रोग्राम में खुशामदी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, कैसे हैं आप?
जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए।
सर आपने तो वो मैसेज करके मुझे सुना दिया था।
कैसर मुझे कहता है जब मेरे से बात हुई कहता है अब मैंने जी क्या बात करनी है, अब कुछ रह गया बात करने के लिए। जी सर बहुत
अभी आपने ये नहीं पूछा कि मैंने मैसेज क्या किया था।
उसका जो असर था ना वो मैंने बता दिया
हाँ, सही
उसका असर, उस असर
इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरा जो ननिहाल है वो इस्लामाबाद से, पिंड इस्लामाबाद से।
अच्छा
तो वहाँ ये फिक्रा बहुत इस्तेमाल होता है कि हुनर आम है
सोचे ना चोट, तो मैंने एग्जाम्पल में चोट लगी हो उसके ऊपर टिंचर लगा दे और मुझे आराम होगी। तो ये मुझे मैसेज कर रहे हूँ आराम। मैं कैसे भाई अभी तो पूरा दिन भी नहीं गुजरा।
नहीं नहीं हूँ आराम है, उनते उन रोजे खोलने वास्ते पहुंच गए ना मुल्क वापस। हाँ जी वो ठीक है। अच्छा सर बताओ आज तो बड़े फायर
रोजे नहीं खोलने के लिए बल्कि आपकी जो सहरी है ना हाँ। तो भी उन्होंने पुरसकून बनाया कि आप क्यों उठते हैं 4 बजे ना
हाँ।
आप आराम से उस वक्त उठे जब सहरी शुरू होगी।
बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल,
उन्होंने सबको कहा आराम से तरावियों पे फोकस करें, नमाजें पढ़ें, रोजे रखें
हाँ।
किस चक्कर में है कि दुआएं मांगेंगे बैठकर, दुआएं मांगे
इस दफा जो है कुदरत का कानून नहीं चला ना।
कैसर भाई बेहतर मुसलमान वही है जो अपने मुसलमान भाई का ख्याल करे।
बिल्कुल वही कह रहे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखा है।
अच्छा आज बताएं जी आज जो अफगानिस्तान का मैच हुआ, आज जो फायरवर्क्स हुए हैं, ओहो हो बताएं जरा उसके बारे में जरा थोड़ा।
देखिए मैं टू बी ऑनेस्ट मतलब मेरे लिए इतना सरप्राइजिंग नहीं था। अब क्यों नहीं था, अब देखिए कि जो इंग्लैंड का ट्रैक रिकॉर्ड है ना, ये पिछले अगर कितने ही वनडेज आप देख लें, इंग्लैंड कोई वनडे नहीं जीता, तो इसका मतलब था कि उनकी टीम कहीं ना कहीं कमजोर थी। वो इंडिया से हार कर आए हैं, उसके बाद ये जो 350 चेस हुआ उनके खिलाफ
जी
ऑस्ट्रेलिया ने किया,
ऑस्ट्रेलिया
ठीक है। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान देखे ना कि अफगानिस्तान का आपको पता होम ग्राउंड कौन सा है
जी?
पाकिस्तान,
अफगानिस्तान का होम ग्राउंड
पिशावर है और इस वक्त उनके जो कोच हैं वो यूनुस खान है।
नहीं 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 उनका होम ग्राउंड है दुबई
हाँ, ज्यादातर वहीं खेलते हैं
का, लेकिन ट्रेनिंग तो पिशावर में करते हैं ना।
यस यू आर
राइट, जिस तरह होम ग्राउंड से मुराद मैं ये कह रहा हूँ कि वो जैसे होता है ना कि हम लोग अपने मैदान पर खेलते
हैं। हाँ,
हाँ। अफगानिस्तान कोई टीम जाती नहीं है, इसलिए अफगानिस्तान खेलता है किसी न्यूट्रल सेंटर पे, जैसे कि हमने भी बहुत अर्सा खेला था। तो इन दिनों जो अफगानिस्तान का वो होम ग्राउंड है ना वो यूएई है, दुबई है, जो भी कह लें अपना। और आप ये देखें कि इंग्लैंड वो टीम थी जिसने ये कहा था कि जो
वेल्स क्लब ने, यस इंग्लैंड एंड वेल्स क्लब ने कहा था कि हमको नहीं खेलना चाहिए इनके अगेंस्ट क्योंकि ये विमेन स्पोर्ट्स को ज्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं।
तो आप ये देखिए ना कि एक तो इंग्लैंड कमजोर थी, दूसरा था अफगानिस्तान का एक जज्बा बहुत टॉप पे था, उन्हें था कि भी इस टीम ने हमें यह कहा कि हमें इनके साथ नहीं खेलना चाहिए, तो हम इनके खिलाफ पूरी फोर्स, पूरी ताकत, पूरा जज्बा जो है ना वो कह ले के हम लड़ जाएंगे ना, उन्होंने वही किया। इसलिए मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं था। देखिए ना, अफगानिस्तान अब वो टीम तो नहीं है कि जिसे आप ये कहें कि जी ये कुछ सेटबैक हो गया। अफगानिस्तान बड़ी बड़ी टीमों को हराता आ रहा है, आपको पता है कि उसने वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला था
जी।
और अगर वो ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर ना खड़े हो जाते तो शायद वो आगे भी चला जाता, बल्कि चला गया था वो मैच तो वन साइड ही ले गया ना आपके हाथ से, मैक्सवेल निकालकर उनके हाथ से। वन अदरवाइज उनकी परफॉर्मेंस आपको बहुत अरसे से बता रही है कि वो ये टीम वो नहीं है जिसे आप आसान लो। सेकेंड है कि देखिए आप अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, स्पिन बॉलिंग। उनके पास दुनिया की क्वालिटी स्पिन बॉलिंग है, राशिद खान दुनिया का टॉप लेग स्पिनर जिसने ऑलरेडी एक रिकॉर्ड बना दिया है, यानी अगर आप ओवरऑल तीनों फॉर्मेट से विकेटों की बात करें तो राशिद खान इस वक्त 600 प्लस विकेटों पर है, यानी कि वो 1000 भी क्रॉस कर सकता है। सॉरी T20 की बात कर रहा हूँ, T20 की इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ये सारा मिलाकर ना। तो बात यह कि आपके पास क्वालिटी लेग स्पिनर है, उनकी स्ट्रेंथ है ये ना। फिर उसके बाद अफगानिस्तान का देखें कि वो कॉम्बिनेशन एक ऐसा है कि उन्होंने एक दो उनके पास सीनियर प्लेयर अब रह गए हैं, ज्यादा नहीं है, जैसे मोहम्मद नबी है। पर मैं यही कहता हूँ कि मैं कहता हूँ देखे ना नबी की उम्र कितनी है इस वक्त, मेरे ख्याल वो late 30s में होगा ना इस वक्त, लेकिन उसने देखे कि कितनी तेज खेला है, कितनी तेज उसने 40 रन जो भी उसके करीब उसने बनाए हैं,
40 बनाए
हैं। हमारे जो लोग जो 10-10 साल का एक्सपीरियंस रखने के बाद उतने ही स्लो हो जाते हैं,
टुक टुक टुक
उतने ही डॉट बॉल खेलते हैं, उतने ही वो डिफेंसिव खेलते हैं। और ये जो टीम है ये आपके ऊपर चढ़ाई करती है। अब देखे ना, एक बैट्समैन ने इब्राहिम जरदार ने 177 रन किए 146 बॉल पर, उसने 6 छक्के मारे, यानी कि अकेला ही वो आधे से ज्यादा स्कोर कर गया। तो और फिर दूसरा ये था कि जो इंग्लैंड की शिकस्त हुई थी ना ऑस्ट्रेलिया के हाथों, वो भी सबके लिए एक पैगाम था कि इंग्लैंड को मारना बुरी वो कोई मुश्किल नहीं है। और आपकी जो जहां पर आपका मैच खेला गया वो भी बैटिंग के लिए साजगार था,
लेकिन कैसे जो रूल तो ले गया था, वैसे मैच को ले गया था, उनको बस 2 छक्के चाहिए थे एंड पे, लेकिन वो नहीं कर सके। जो रूल ने तो काफी खींचा,
थोड़ा सा बैड लक रही,
बैड लक रही इंग्लैंड,
लेकिन अच्छा फाइट किया अफगानिस्तान ने।
नहीं देखिये, बात ये होती है कि फाइट तो ठीक है कि किया उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन बात यह कि मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें तो इंग्लैंड जितनी अरसे से क्रिकेट खेल रही है, बल्कि क्रिकेट की मौजूद है ना वो
जी,
मतलब और अफगानिस्तान जितने अरसे बाद इन हुई है, आप फैसिलिटीज देख लें, वो इंग्लिश क्रिकेटर्स को किस किस्म की फैसिलिटीज मिलती है, अफगानिस्तान की क्या फैसिलिटीज मिलती है। तो बात यह कि मैच करीब आया, इसमें कोई शक नहीं है, जो रूट ने बड़ी कोशिश की है, सारा कुछ किया, लेकिन एट द एंड रिजल्ट क्या निकला है कि अफगानिस्तान को 2 पॉइंट मिले, और यही वो 2 पॉइंट है जो उसे सेमीफाइनल में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो रन रेट वाला चक्कर नहीं है। अब जो मैच है ना उसमें जो जीता वो सेमीफाइनल खेलेगा। अफगानिस्तान के लिए बैड लक क्या हो सकती है अगर बारिश हो जाए, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 3 पॉइंट है, जनूबी अफ्रीका के 3 पॉइंट है, तो ऑस्ट्रेलिया का मैच है अफगानिस्तान के साथ, तो अगर जो टीम जीत गई वो सेमीफाइनल में चली जाएगी सिंपल, और अगर बारिश हो गई तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगा, अफगानिस्तान फारिग हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी गेम, देखे ना उनका ग्रुप बहुत सख्त था, आप जरा कंपैरिजन करके देखें ना, हमारे ग्रुप में जो न्यूजीलैंड है ना, ठीक है उसने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे खिलाफ उसका ट्रैक रिकॉर्ड कभी इतना अच्छा नहीं रहा। न्यूजीलैंड वो टीम थी जिसके बारे में मतलब हम अक्सर ये सोच रहे कि ठीक है इससे तो जीत जाएंगे, हमसे कोई मसला नहीं। हत्या के 92 वर्ल्ड कप में देखे न्यूजीलैंड ने 7 अपने, क्योंकि उस वक्त आपका था सिस्टम इस तरह का, हर टीम ने हर एक से खेलना था, तो न्यूजीलैंड ने 7 मैच जीते थे जिसमें सब टीमों को हरा चुकी थी वो, और पाकिस्तान जो सबसे कमजोर टीम समझी जा रही थी 92 वर्ल्ड कप की, उसके साथ उसका आखिरी ग्रुप मैच था जिसे पाकिस्तान ने उसे हराया। उसके बाद फिर सेमीफाइनल में दोनों टीमें आमने सामने आई, पाकिस्तान ने फिर उसे हराया वहां पर। तो न्यूजीलैंड इतना डरती है पाकिस्तान से नॉकआउट स्टेज में खेलने ना, क्योंकि बाद टीमों पर प्रेशर बहुत होता है इसका, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल फायदा नहीं उठा सका क्योंकि उन्होंने आपको ट्राई सीरीज के ग्रुप मैच में हराया, फिर फाइनल में हराया उन्होंने आपको, फिर उन्होंने आपको यहां से मतलब हराया। तो मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले ये बात कर रहे थे कि अच्छा पाकिस्तान को सेमीफाइनलों में खेलना पड़ेगा, यानी प्लानिंग आ गई थी, सोचे आप कोई भी ये बात नहीं कर रहा था कि भाई आप पहले ग्रुप से गुजरो,
पहले ग्रुप से गुजरो।
आपने बहुत उनको सुना था, बहुत थी ज्यादा मैंने ये सुनी थी,
उनमें एक आमिर भी था और सेमीफाइनल में पाकिस्तान जाएगा आप देख लेना।
हाँ, बात ये कि इसमें जिस भी लिहाज से देखे ना, मेरा ख्याल था कि अफगानिस्तान से जो तोको थी ना उसने बिल्कुल उसी तरह की गेम खेली है। उसे पता था कि अगर हम ये मैच जीते हैं तो हमारे चांसेस कितने ज्यादा हो जाएंगे। आपको मतलब जब मैंने लास्ट टाइम ये बात की थी कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना इसमें बड़ी ह्यूज अमाउंट है प्राइज मनी, हर मैच जीतने पर आपको, हारने पर भी जो सबसे आखिर में उसको भी बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन जो जितना आगे चलते जाएंगे आपको उतना पैसा भी मिलेगा।
उन्होंने कहा कि बाहर के भी पैसा मिलना है तो फिर जीतने की क्या जरूरत है।
तो वही कह रहे
हो
ना
कि कार जाओ
अफगानिस्तान का आप ग्रुप देखें, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, कोई भी टीम कमजोर मतलब उससे आते नहीं थी।
नहीं नहीं नहीं,
हमारे पास तो चले बांग्लादेश है ना, और हमारे पास न्यूजीलैंड को भी मैं इतना स्ट्रांग नहीं समझता, चले इंडिया स्ट्रांग टीम थी हमारे पास ना, तो लेकिन हम उससे फायदा नहीं उठा सके। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने पूरे जज्बे से, असल बात वही होती है कि इंटेंट क्या है। उनके प्लेयर्स ने 325 लगाया जाकर और 325 को फिर उन्होंने डिफेंड करके भी दिखाया। तो बात यह कि अब ये ऑस्ट्रेलिया भी, उससे मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया भी खतरा महसूस करेगी, क्योंकि आपको मतलब ये देखिए ऑस्ट्रेलिया ने कितना चेस किया, 359 या जो भी है इसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना वो 2013 के बाद पहला मैच जीती है चैंपियंस ट्रॉफी में, हर मैच हार जाती थी ऑस्ट्रेलिया, यानी 2013 के बाद, 2013 में इन्होंने कोई नहीं जीता, फिर 17 में कोई जीता, 2021 में तो ट्रॉफी हुई नहीं। अब आके उन्होंने जो मैच जीता वो बड़ा जबरदस्त तरीके से जीता, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया उतनी स्ट्रांग टीम नहीं है, क्योंकि हम इसे
क्योंकि उसके तीन मेन प्लेयर्स तो खेल ही नहीं रहे ना, तीन जो टॉप प्लेयर्स
देखे ना। आपको मैं बिल्कुल दिलचस्प बात बताता हूँ कि मैं हालांकि क्रिकेट को मतलब रूटीन में फॉलो करता हूँ, लेकिन जब मैंने मैच देखा ना ऑस्ट्रेलिया का, तो एकदम से तो मुझे भी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया खेल भी कौन खेल रही है, कि मुझे एक भी बॉलर फेमिलियर नहीं नजर आया शुरू में जो थे, कि वो सब नए नाम थे मेरे लिए ना। तो बात ये कि अगर उनके खिलाफ इतना स्कोर हुआ तो उसकी वजह के बॉलर देखे ना, उनकी जो असल क्रीम है वो तो आई नहीं। तो अब ये कि ऑस्ट्रेलिया को भी ये पता है कि मैच जीतेंगे तो आगे जाएंगे, और अफगानिस्तान को भी पता है, और अफगानिस्तान को प्लस पॉइंट ये है कि ये दुबई की कंडीशन उसके लिए बड़ी, मतलब जहां भी है वो खेलेंगे, चाहे वो दुबई में खेलेंगे,
अब तो पाकिस्तान खेलेंगे ना, ये तो अगर ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का हुआ तो फिर तो पाकिस्तान नहीं खेलेंगे।
नहीं, अभी तो हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच की।
अच्छा अच्छा, ओके।
तो चले वो मैं ये जहां भी हो, लेट्स से अगर वो दुबई में हो रहा है, जहां भी है, वो पाकिस्तान में है, जहां भी है, अफगानिस्तान इन सारी कंडीशन को बहुत अच्छी तरह जानता है। उनके प्लेयर्स मेरे ख्याल से अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है अगले मैच में।
अच्छा,
मेरा ख्याल ये कि ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है अफगानिस्तान, क्योंकि जज्बा जो होता है ना वो लड़ने के लिए तैयार है इस वक्त, और हमेशा आप इसका बड़ा बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है टीमों के ऊपर, कि आप जब पूरी ताकत से लड़ जाते हैं ना, और देखिए इनके सारे वो प्लेयर हैं जो लीग्स खेलते हैं ज्यादातर।
लेकिन आज तो कैसे जो मैच था वो कदाफी स्टेडियम में नहीं था, आज तो दुबई में था नहीं ना, आज तो
मैं बात कदाफी स्टेडियम में, तो मैं यही बात करूँ ना कि दोनों एक जैसे ग्राउंड है ना सारे।
हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके।
पाकिस्तान हो या दुबई हो, ये सारे
ठीक है, ओके ओके ओके, ऑलराइट।
कदाफी में
पाकिस्तान में भी पीएसएल खेल रहे हैं, दुबई में भी खेलते हैं। अच्छा, तो ये सारी कंडीशंस का बहुत अच्छे तरीके से पता है।
अच्छा, आप बताएं जरा इंडिया के साथ जो हमारा मैच था, और जरा थोड़ी सी हिस्ट्री ट्रेस करें कि जिस वक्त इमरान खान कैप्टन था तो पाकिस्तान कितनी बार इंडिया से हारा, कितनी बार जीता, ड्रॉ कितने हुए मैचेस, और अब जो पाकिस्तान की हालत है तो जरा स्टैट्स बताएं थोड़े से हमें।
देखिये, मतलब वही कहते हैं कि कौन सी बातें याद करवा रही है, क्योंकि मतलब मैं एक बात बताता हूँ कि एक वो वक्त था कि जब, अच्छा मैं इस पर थोड़ा सा आपको एक पीछे थोड़ा लेके जाता हूँ इस हवाले से। देखिए होता क्या है कि हम जब भी मैच जीतते हैं ना तो हम जश्न मनाते हैं, ठीक है। ये कौन करता है? ये वो करता है जो कभी कभी जीतता है, ठीक है। तो अब देखिए ऑस्ट्रेलिया, और हमने क्या क्या तीन अब तक सिर्फ ट्रॉफी जीती है, एक 2009 में हमने, सॉरी 92 वर्ल्ड कप जीता, 2000 में T20 जीता, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, ठीक है। और अब बड़ा जश्न मनाते हैं, इतना के पूरे मुल्क में जश्न मनाते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को देखें आप, उसने ऑस्ट्रेलिया पता, जब ये वर्ल्ड कप जीतकर वापस गई थी ना तो सिर्फ उनके दोस्त रिश्तेदार रिसीव करने आए थे एयरपोर्ट पर।
अच्छा
क्यों? अच्छा क्यों नहीं आए? क्योंकि वो कहते हैं ये तो आम सी बात है हमारे लिए, हम तो वर्ल्ड यानी 6 वर्ल्ड कप वो टीम जीती हुई है, उनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। देखिए तजस्सुस होता है ना, जैसे हमारा जहांगीर खान जीत कर आता था स्क्वैश में, परवाही किसी को नहीं है कि यार तो ट्रॉफी तो हमारी है, हम नहीं जीत रहे। इन टीमों का ये सूरत हाल होती है ना, वहां इतना ज्यादा वो मैटर नहीं करता, हमारा मैटर करता है क्योंकि हम वो कहते हैं ना कुदरत के निजाम पे चलते हैं, हम अनप्रिडिक्टेबल होने को अपनी कारनामा तस्वर करते हैं, नाकाबले इतबार है। तो ये चीज है कि ये जो आप कह रहे ना कि आप कभी कभार जीतते हैं और वो टीमें जो बड़ी रूटीन में जीतने चली आती है, एक बड़ा फर्क होता है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बारे में अभी कोई मैं हमारे एक रिसर्चर है जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी है ना, तो वो कहते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया पर आप स्टडी करें ना, तो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी मेंटल, जो कह लेना मेंटली बड़े स्ट्रांग है, यानी वो प्रेशर नहीं लेते। आप उनकी चाहे 3 विकेटें गिरा दें 15 स्कोर के ऊपर, उन्होंने एवरेज को नहीं नीचे आने देना, 6-7-8 मतलब जो भी प्लेयर आता जाएगा मारता चला जाएगा। तो बात यह कि ये जो मेंटल स्ट्रेंथ की बेस पे वो रूल कर रहे हैं, और यही अब आप बात चुकी इमरान खान कर रहे हैं, तो मैं इसी पे आना चाह रहा हूं कि उस वक्त क्या था कि आपका लीडर मेंटली बड़ा स्ट्रांग था। बात होती कि आप मैं कहता हूं रिजवान भी अच्छा है, रिजवान भी बड़ा स्ट्रांग, लेकिन क्या है कि जो इमरान खान था ना वो एक ऐसा पैकेज था जो आपकी क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी शायद कभी कम ही आएगा। यानी कि जो बंदे ने आला तालीम याफ्ता था क्रिकेट में, मतलब वो कहने के उसने बड़ा नाम पैदा किया, और मतलब ये कहने कम्युनिकेशन पे उसे बड़ा पूर था और बोल्ड बहुत था, यानी कि डिसीजन लेना जानता था। अभी इमरान ने ये किया थोड़ा सा अपना मैच के हवाले से ना, कि उसने भी अपना उसका भी एक मैसेज आया, यानी उसकी सिस्टर के
थ्रू स्टैट्स बताएं जरा, पाकिस्तान जब खेलता था तो इंडिया के अगेंस्ट स्टैट्स बताएं थोड़े से प्लीज।
मैं आपको बताएंगे, मैं आपको थोड़े से नंबर देता हूं, फिर इस पर हम बात आगे कर लेते हैं। कैसर भाई और शाजिया साहब, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में टोटल 5 मैचेस इन दोनों के दरमियान में, जिसमें
टेस्ट की बात
ऑल टुगेदर,
और मैं उस पर आ रहा हूं, जैसे हम ट्रॉफी वाइज चलते हैं। सबसे पहले तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में तकरीबन 5 मैचेस आमने सामने हुए, जिसमें से 2 इंडिया जीता है, तो चैंपियंस ट्रॉफी में हमें जो है वो एजरा हमने हरा दिया। आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में देखें तो 8 मैचेस हुए टोटल, और 8 के 8 मैचेस इंडिया जीत गया, हम हार गए। इसके बाद T20 की बात करें, टोटल 8 मैचेस हुए जिसमें से इंडिया 7 जीता है और हम जो है वो 1 जीत गए। टोटल 21 मैचेस इन वर्ल्ड कप के हिसाब से अगर हम लेके चले, अभी स्टैट्स में बस ये थे, उसमें से 17 टाइम 21 में से वो इंडिया जीत।
हाँ, लेकिन इमरान खान के जमाने में जरा बताएं कि क्या हालत थी पाकिस्तान की, बात
करते थे कि इमरान खान के दौर में हमने खेले उनके साथ 5 टेस्ट टोटल।
ओके,
उन 5 टेस्ट में से हमने 4 जीते।
वाओ,
और एक सिर्फ एक जो था ना वो
ड्रॉ हुआ था। हाँ,
यानी हम उनसे कभी टेस्ट नहीं हारे। और आपको पता है कि जो टेस्ट किसी भी टीम को अपने टेस्ट करना होना तो वो टेस्ट में ही किया जाता है, क्योंकि टेस्ट होता है 5 दिन का, इसमें आपका फ्लूक नहीं चलता, तुक्का नहीं लगता। T20 में लग सकता है, कोई एक बैट्समैन खड़ा हो गया उसने यानी बड़ी लंबी नहीं ऐसे छक्के मार दिए ना।
अच्छा,
वनडे में भी होता है कोई ना कोई ऐसा सेशन आते हैं जिसमें जो टीम कंट्रोल कर गई वो जीत सकती है, लेकिन टेस्ट में मुमकिन नहीं होता क्योंकि आपने 2-2 इनिंग्स खेलनी होती है, 5 दिन का मैच होता है, उसमें जो टीम स्ट्रांग होती है ना अक्सर वही जीतती है।
ओके,
तो पाकिस्तान इतना स्ट्रांग था कि उसने इंडिया को कभी टेस्ट नहीं जीतने दिया। यही वजह है कि आज भी आपका सुनील गावस्कर, आज भी आपके कपिल देव, आज भी आपके जो उस दौर के क्रिकेटर है ना या उसके बाद के भी हैं, वो हर वक्त पाकिस्तान इमरान खान क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता था कि उस वक्त वो ऐसा ही था कि जैसे हम आईसीसी में उनके खिलाफ खेलने जाते हैं ना तो हमें ये होता है कि हम हारेंगे, मोस्टली यही होता है ना। जैसे अभी अपना आमिर भाई ने फैक्ट ये स्टैट शेयर किए हैं तो ये बता रहे कि 8 खेले, 8 के 8 हारे। तो ये
अपने मुल्क में नेहरू कप हरा के आए, शारजा में जाते थे खेलने के लिए, वहां पे हराते थे, हर जगह हराते थे इंडिया को, हर जगह इंडिया तो इतना स्केर्ड हो गया था कि वो तो अब शारजा में आना ही नहीं चाहता था। वो कहता था शारजा का तो बिल्कुल ग्राउंड जो है वो कर्स्ड है हमारे लिए, हम नहीं खेल रहे पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन आप देखो ना कि सिर्फ कितने, एक इमरान खान भी नहीं था, सारे स्टार थे, मियां दाद था, सलीम मलिक था अपने जमाने में, रमीज राजा, एजाज था, फिर उसके बाद जो यंगस्टर आ गए थे, फिर जैसे कि इंजमाम आ गया था, वसीम था, वकार था, लेकिन इस टैलेंट को भी तो हंट किया था ना उसने जो है खान ने, ये भी तो बात है ना। आप तो ये टैलेंट ही नहीं समझ पा रहे कि किसमें है किसमें नहीं है।
शायद ये देखिए बात यही है कि जो मेन चीज होती है, जो डिसीजन मेकर होता है ना,
हाँ,
वो अगर ऑनेस्ट है ना तो आपकी हर चीज ठीक होती चली जाती है, क्योंकि नियत जो होती है मैं हमेशा कहता हूं इसका बड़ा दखल होता है, आप अच्छी नीयत वाले के हाथ में दे देना कोई चीज तो वो कमजोर भी होगा ना, तो वो बड़े बड़े ऐसे काम कर जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। और एक बदनीयत के हाथ में एक तरक्की याफ्ता मुल्क भी दे देंगे ना, वो उसको बर्बाद कर देंगे।
बिल्कुल।
तो यही चीज हो रही है कि आपने डिसीजन मेकिंग कि किसको दी है, किस बंदे को आप सिफारिश पे लेकर आए जिसका क्रिकेट से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं, उसे आपने चेयरमैन बना दिया। अब वो चेयरमैन है जिसका टीम का कुछ पता नहीं है। पहली दफा मेरी, आमिर भाई इसको मजीद मतलब कंफर्म कर सकते हैं, मुझे नहीं याद पड़ता कि हम इतने, हमें पता ही कुछ नहीं था कि ओपनिंग कौन करेगा, वन डाउन कौन होगा, टू डाउन कौन खेलेगा, यानी हर मैच में चेंजेस थी समझ लें। आपकी टीम ही पता नहीं था, पहले पता तो होता ना ठीक है आप हार रहे हैं, लेकिन बात है पता होता था, अब वो भी नहीं था। तो बात है क्योंकि डिसीजन मेकअप आपने उस बंदे को दे दिया, डिसीजन मेकिंग जो अपने बच्चों को जाके दुबई में मैच दिखाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, जैसे ये ज्यादा,
जिसकी गाड़ी पे फिर रहा है मलिक रियाज की, उसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरपोल को कहा हुआ है कि इस बंदे को पकड़ करके लेकर आओ, इसको पकड़ कर लेकर आओ, उसकी गाड़ी में, उसकी रोल्स रॉयस में फिर रहता रहे दुबई में।
क्या बात है, आपको वो ये दे रहे हैं कि आप भेड़ बकरी हैं, सब कुछ हमारे कंट्रोल में, हम जो चाहेंगे करेंगे। देखिए ना, बात ये होती है कि पीसीबी का चेयरमैन पहले भी जाते थे, कभी ऐसा नहीं होता कि आपका चेयरमैन ही हर तरफ नजर आ रहा है। फिर दूसरा ये देखिए ना कि आप मतलब स्टेडियम का आपने दुनिया भर में वावेला कर दिया, हमने ये कर दिया, रेनोवेट कर दिया, कोई 19-20 का फर्क हो गया जो भी है। असल मसला स्टेडियम नहीं था, असल मसला था कि आपकी टीम कितना तैयार है। आप उसी स्टेडियम में भी मैचेस करवा सकते, चले आपने रेनोवेशन की दैट्स गुड, लेकिन आप इतना उसकी प्रमोशन में लगे रहे कि आपने उस टीम को बिल्कुल तोजो नहीं दी। दूसरा यह कि आपने टीम में ऐसे ऐसे प्लेयर शामिल कर दिए जिससे बाकी जो आपके प्लेयर थे, मैं लास्ट टाइम भी कहा था, वो डिमोरलाइज हो गए कि जब आप इसमें होते हैं ना कि एक अच्छी लोगों में एक वो कहते हैं एप्पल रोटन एप्पल ले आते हैं तो वो सारा मामला खराब हो जाता है। तो ये चीजें दुनिया माने या ना माने, लेकिन हकीकत यही है कि ये सारा नीयत का काम था, नीयत ही नहीं थी जिस वजह से हमने, वरना वही टीम है जो आपके बाहर जीत कर आई थी, आपके ज्यादा प्लेयर वही थे ना, वही कप्तान था, वही सारा था जो आपको ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में रखी, जिम्बाब्वे को रख रही है, ये साउथ अफ्रीका को आप क्लीन स्वीप करके आए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद आपने आते ही जो चेंजेस की और चैंपियंस ट्रॉफी को आपने जिस तरह लटका के रखा आखिरी वक्त तक, हमें पता नहीं था कौन आ रहा है, और जब अनाउंस हुआ तो एकदम से सोशल मीडिया चीख उठा कि कहाँ से आ गया फहीम और ये दूसरे को
तैयब, देखो ना वो तैयब कौन है, हमें तो पता नहीं है तैयब का, और वो जो रिस्क, वो जो स्पिनर है प्रॉपर सुफियान, उसको खिलाया ही नहीं, और दुबई की पिच पे खिला रहे हैं और सुफियान को नहीं खिला रहे, मतलब स्पिनर्स को नहीं खिला रहे। वाह वाह वाह, क्या डिसीजन है
इसमें। वो आपका जवाब ये जो आपने मुझे कहा था ना कि नीयत, देखिए बात ये कि आपके इमरान खान क्या, उसने पिक किया इन इसको आकिब को, इंजमाम को, मुश्ताक अहमद को, आज भी वो प्लेयर्स आपके वर्ल्ड कप को कितना अर्सा हो चुका है,
वसीम को वकार को,
बिल्कुल आप उनमें से कोई मुझे एक सिंगल प्लेयर पाकिस्तान टीम का ऐसा बता दे जो ये कहता है इमरान खान बदयानत था, उसे मतलब लीडरशिप नहीं आती थी, आज भी वो नहीं कहते इतना ही।
शोएब अख्तर कहता है कि अगर मेरा जो कैप्टन है इमरान खान जैसा होता, मैं 10 साल और खेल लेता, 10 साल।
यहाँ क्योंकि वहां पर टाइम भी आगे कम है, मैं यहाँ इनपुट दे दूं, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल 100% सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक सिनेरियो आपसे डिस्कस कर लूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हो क्या। देखिए सर, आपको मुझे याद होगा कि हॉकी की ले लेते हैं बात, सलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह, शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर, मोहम्मद आलम गोलकीपर, आज किसी का नाम बता सकते हैं मुझे?
कैप्टन का भी नहीं पता आपको?
ठीक है, यहां रुकते हैं, अब आप मुझे बताएं, रोशन खान, जहांगीर खान, जानशेर खान, आज बता सकते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही
सर, अब क्रिकेट का नंबर है ना,
यही है ना
बस, तो आप सोचे ना सर, ये मुल्क आजाद हुआ $1 1 रुपए के बराबर था, $1 3 रुपए हो गया, $10 रुपए हो गया, आज 300 के करीब पहुंच गया। वी आर इन अ डिक्लाइन पोजिशन, वी हैव टू रियलाइज दिस। और ये सिर्फ वो जो प्लेयर है ना सर, ये पाकिस्तान में रहते हैं, दे आर पाकिस्तानी, हर तरीके से एक आम आदमी पे इन चीजों का असर पड़ रहा है, तब्दील, ये चीजें चेंज हो रही है वक्त के साथ साथ, जो हमें नजर नहीं आ रही है ये प्लेयर्स के ऊपर भी नजर आ रही है, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने $5 मिलियन की सिटीजनशिप अनाउंस कर दी है, ये आप इस चीज को समझे, मालदार और richest पर्सन ये दुनिया में रहेंगे और वो रिपोर्ट तैयार कर लेंगे काम करने के लिए, एक ऑनेस्ट काम करने वाला, मेहनती,
एफिशिएंट
बंदा नहीं चाहिए उनको, दुनिया को नहीं चाहिए,
नहीं वो रोबोट कर लेगा ना।
आमिर भाई मैं
तो ये डिक्लाइन सर क्रिकेट में भी आ गया है ना, ये तो इसलिए बच गया क्योंकि पैसे इसमें ज्यादा है तो ये इतना चल गया, वरना कहाँ है हॉकी सर, कहाँ है हमारा स्क्वॉश।
इसमें आमिर भाई मैं आपको थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इसमें लास्ट में, क्योंकि मुझे पता
जी आपके 30 सेकंड्स है
जी। आप देखिए कि इंडिया की टीम कहाँ पहुंच चुकी थी, बिल्कुल नीचे। अब आपकी वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेलती है, वो T20 भी जीतती है आपका वर्ल्ड कप, वो आपका वनडे वर्ल्ड कप भी जीतती है। क्यों जीतती है? क्योंकि उन्होंने अपने सिस्टम में किसी को इंटरफेयर नहीं करने दिया। आपके सिस्टम के थ्रू लोग आ रहे हैं, वो खेल रहे हैं, आप रूल करते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वही जो सिस्टम से आ रहा है वो खेल रहा है, वो रूल कर रहे हैं। हमारे मसला ये कि देखिए टैलेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन आप में आपने गवर्नमेंट इन लोगों के हाथों में चली गई है कि जो हर चीज पे कंट्रोल चाहते हैं, और यही वजह है कि आपके अपने बैठे बैठे अपने क्रिकेट को बर्बाद कर दी। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, आप इसको वापस ले जाए टैलेंट के ऊपर, जो डिजर्व करता से खिलाएं, आपकी यही टीम दोबारा जीतेगी
इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू,
बहुत शुक्रिया,
बहुत बहुत शुक्रिया कैसर, आपके जो है बहुत वैल्यूएबल, क्योंकि कैसर खुद भी खेलता रहा है ना, तो ये इसको सारा कुछ इनसाइड आउट जो है इसको सारी स्टोरियां पता होती हैं, और माशाल्लाह मैं कह रही थी कि इसकी तो मेमोरी भी इतनी अच्छी है, इसको सारे स्टैट्स भी याद होते हैं। तो ये था जनाब,
बहुत शुक्रिया कैसर, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी, बहुत शुक्रिया। और शहजाद जी, आपका भी हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया,
थैंक यू,
और अच्छा डिस्कशन रही। हाँ, हाँ। लेकिन ओवरऑल चीजें मैंने जैसे आखिर में बताया, इन चीजों को भी हमें समझना होगा आज किसी
लेकिन, लेकिन ये तो प्राइम क्लास को बिलोंग करते हैं ना, ये तो दे आर क्रिकेटर्स, दे बिलोंग टू द रिच क्लास,
हम
दे डोंट बिलोंग टू द पुअर क्लास,
हमारी कहां थी हमें मालूम है,
लेकिन वो तो गरीब ही थे ना।